તારીખ 20/12/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 397 અને 430 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 95.
કોઈ પણ મહાપુરુષને યોગે આ જીવ અશરીને અશરીને એટલે પાછો વળીને, જ્યારે કોઈ જીવ સંસારથી પાછો વળવા ચાહે છે, આત્મકલ્યાણ કરવા ચાહે છે, એટલે શું એ સંસારથી પાછો વળવા માંગે છે. એવું કોઈ મહાત્માની યોગે એને સમજાવે તો પોતે મિથ્યા ઉપદેશ અત્યાર સુધી પૂરતો હતો, તે પ્રવૃત્તિથી એવી પ્રવૃત્તિથી બીજાને ઉપદેશ દેવાની પ્રવૃત્તિથી પોતાનું જ્ઞાન આવરણ પામ્યું છે એમ જાણે, એમ જાણીને સાવધાન થઈ જાય, જાગૃત થઈ જાય, ચેતી જાય અને નિરાવરણ થવાનો વિચાર કરે, આત્મકલ્યાણનો યથાર્થ વિચાર કરે, ત્યારે બીજાને ઉપદેશ કરતા અટકશે, બીજાને પ્રેરણા આપતા અટકશે, અથવા બીજાને પોતાની વાતનો આગ્રહ કરવાનો પોતે છોડી દેશે. વધારે શું કહીએ, એક અક્ષર બોલતા અતિશય અતિશયની પ્રેરણાએ પણ વાણી મૌનપણાને પ્રાપ્ત થશે, અને તે મૌનપણું પ્રાપ્ત થયા પહેલા જીવને એક અક્ષર સત્ય દેવાય એમ બનવું અશક્ય છે. આ વાત કોઈ પણ પ્રકારે ત્રણેકાળને વિશે સંદેહ પાત્ર નથી. એક અક્ષર બોલને કે પ્રેરણા આત્મા કો હોય, આત્મા કો એક અક્ષર ભી બોલને કા વિચાર હોય, ઉત્સાહ હોય, ભાવ હોય, ઉસકે પહેલે ઉસકો બહુત વિચાર કરના ચાહીએ. પર બહુત વિચાર કરને સે મૌન પણ આવ જાય, બોલને કા અતિશય અતિશય ભાવ જાય, ફિર ભી બોલા નહીં જાય, મૌન રહા જાય. કિસ કારણ સે, કિસ કારણ સે કે મેં કહી ગલત તો નહીં બોલુંગા, મેં બોલને મેં મેરી કોઈ ભૂલ તો નહીં હોગી, મેં બોલને મેં યથાર્થ વિચાર જન નહીં કર સકતા, તો કોઈ યથાર્થ બાત તો મેરે સે હો જાયગી, તો પર ઇસસે દૂસરે કો નુકસાન હો જાયેગા, તો ઉસ તરહ સે કિતના ભી બોલને કા ભાવ આ જાય, ફિર ભી બહોત અંદર મેં સતર્ક હો જાને સે, સાવધાન હો જાને સે બોલને કા બંધ હો જાય, મૌનપણા આ જાય. એસા મૌનપણા પ્રાપ્ત હોને કે પહેલે જીવ એક અક્ષર ભી સત્ય બોલતા હૈ એસા બનના અશક્ય હૈ. દેખો ઇસકા મતલબ ક્યા હૈ, જો જ્ઞાની હોતે હૈ ઔર જો યથાર્થ વિચારક હોતે હૈ, તો જો કુછ બોલતે હૈ બહુત વિચાર કરકે બોલતે હૈ, જિસસે અપને કો ના નુકસાન હો ના દૂસરે કો ભી નુકસાન હો, યાને દૂસરે કા કલ્યાણ હો, એસા હી બોલતે હૈ. એસા બોલના વહી સત્ય વચન હૈ, અપના હિત હો દૂસરે કા ભી હિત હો, એસા બોલના સત્ય વચન હૈ, ઔર અપનો કો ભી નુકસાન હો આવરણ આ જાય, દૂસરે કો ભી આવરણ કા કારણ બને, એસા બોલના સત્ય વચન હોને પર ભી અસત્ય હૈ. કોઈ બાત એસા કહેંગે હમ તો સચ બોલે, દૂસરે કો કુછ ભી લગે હમ તો બાત તો સચ બોલે થે, એસા નહીં બોલે, તો અસત્ય વચન હૈ. और दूसरे का हित होने में थोड़ा असत्य बोला जाए तो भी सत्य वचन है. ठीक, गिनते दूसरे प्रकार की होती है.
इसमें निर्भर करता अभिप्राय क्या है जीव का
जी,
इसमें मतलब निर्भर करता है जीव का अभिप्राय क्या है, चुप रहने में या मौन रहने में.
ठीक है,
मतलब क्रिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, अभिप्राय इज
मौन रहने में भी स्व पर आत्मकल्याण का अभिप्राय है और बोलने में भी सब स्व पर आत्मकल्याण का अभिप्राय है। तो जिसको अपनी योग्यता का भान है कि हम हमारी विचार शक्ति यथार्थ नहीं है, हम यथार्थ सुविचारणे में नहीं आए, सुविचारणा में नहीं आए हैं, उनको दूसरे को उपदेश देना, अपनी बात का आग्रह रखना ये तो छोड़ देना, लेकिन कोई बात बोलनी हो तो होगी, अगर हमारे से हमारा और दूसरे का नुकसान हो जाए तो पारमार्थिक नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे भय से मौन हो जाना चाहिए। मौन वाणी मौन पड़ा को प्राप्त हो जाए, तो वाणी मौन पड़ा को प्राप्त हो जाए ऐसी स्थिति आने के पहले अगर एक अक्षर भी कुछ बोला जाता है तो वो सत्य नहीं बोला जाता है ऐसा जानना, ठीक
क्रम
क्रम तो तो बोलने के भी ज्ञानी पुरुष की समझ कितनी है। अगर कोई बोलता है या हम बोलते हैं या दूसरा बोलता है तो इसके पीछे कितनी समझ है।
जैसे अभिप्राय में रहता है कि दूसरे जीव का हित का बात रहता है पर बोलने में थोड़ा सा कड़क आ जाता है, तो उसमें मतलब जो बोलता है उसको किस प्रकार का नुकसान होता है या होता है कि नहीं होता है?
अभिप्राय क्या है इसका?
नहीं, अभिप्राय तो है कि हम इस जैसे हमारे साथ ये चीज बीतती है तो हमारी पात्रता को किस प्रकार से नुकसान होता है, तो सामने वाला जीव इस बात को समझे और अपनी पात्रता का नुकसान नहीं करे, वो अभिप्राय रहता है।
अभिप्राय अगर सही है तो फिर वाणी का अपना दोष है,
और बोलने में कड़क आ जाता है
तो है, कभी मृदु भाषा से भी बोला जाता है पर कभी कठोर भाषा से भी बोला जाता है, दोनों प्रकार बनता है। गुरु भी कभी जरूरत लगते हैं तो मृदु भाषा में बोलते हैं, जरूरत लगती है तो कठोर भाषा में भी गुरु उपदेश देते हैं। इसलिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाषा ऐसी ही होनी चाहिए। जैसे समय साल में पीछे 14 कलश है तो मिथ्या दृष्टि के मिथ्या को छुड़ाने के लिए उसको पशु बुलाए तो समझता नहीं है पशु है क्या, तो वहां आचार्य श्री को कसाई नहीं हुआ है, कोरोना हुई है कि अगर तू नहीं समझेगा तो पशु गति में चला जाएगा, कहीं जीते में तुम चला जाएगा, तो इन मृदु भाषा से बोलते हैं अरे भगवान तुम तो भगवान आत्मा हो, तुम तो भगवान आत्मा हो, ये क्या कर रहे हो, उनको मृदु भाषा से भी कभी कभी संबोधन करते हैं, कभी कठोर भाषा से भी संबोधन करते हैं। तो संबोधन करने वाले का उतना ज्ञान होता है कि ऐसा कहने से भी उसको लाभ होगा और ऐसा कहने से भी उसको लाभ होगा। अगर किसी को नुकसान होता हो ऐसा मालूम पड़ जाए, कठोर बोलने से नुकसान होता हो ऐसा मालूम पड़ जाए तो कठोर नहीं बोलना, कठोर किसके साथ बोलना है? कि कठोर बोलने से भी उनकी जागृति को जागृति आ जाती हो तो बोलना है। जैसे दूसरा दृष्टांत लें कि ये जो धर्मदास के क्षुल्लक थे इनके गुरु थे, उन्होंने बहुत कठोर भाषा में उपदेश दिया, एक क्षुल्लक बन गए थे, त्यागी बन गए थे, हजारों उपवास किया था, संदेश छिखर के सैकड़ों बार यात्रा की थी, लिखते हैं अपनी आत्मकथा कि ऐसे ऐसे बातों से हमको बहुत अभिमान हो गया था, फिर हमारी योग्यता उनकी योग्यता देखकर गुरु ने बोला कि तुम सुंदर शिखर को बहुत बार गए, वहां तो निर्वाण भूमि है तो सिद्ध भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए, वहां तो श्वास तो सब सिद्ध हुए हैं तो क्या नहीं किए, तो बहुत कठोर भाषा में उपदेश दिया, वहां जाते हो सिद्ध भगवान का तुमको दर्शन नहीं होता है तो तुम अंधा है क्या, तो अंधा कहने से उनको बुरा नहीं लगा, इनकी अयोग्यता टूट गई कि अरे मेरा अभिमान तोड़ने के लिए ये कठोर शब्द किया है, कि मैं इतना किया उतना किया उतना किया उतना किया, ये मुझे हो रहा है लेकिन मैं मेरे में कुछ नहीं है। गुरु कहते हैं कि तुम तो अंधा है अंधा बिल्कुल, तो उनको ज्ञान नेत्र खुल गया। ऐसे चरण चक्षु तो थे इनके पास लेकिन ज्ञान नेत्र नहीं थे, तो ज्ञान नेत्र खुल गया, सम्य ज्ञान की प्राप्ति हुई उनको, बहुत उत्तर गया। वो भी ख्याल रखना है, हम मुमुक्षुओं को तो ख्याल रखना चाहिए कि कहीं भी हम कठोर बोलने से उनको नुकसान होता है तो नहीं बोले, लाभ होता है तो अवश्य बोले, वरना मूर्ख है या उर्दू भाषा में बात करें, जैसे परिस्थिति हो ऐसे अनुकूल हम प्रवर्तन करें। योगवाद कोई भी प्रकार से त्रिकाल के त्रिकाल में संदेह पात्र नहीं है। यहाँ तो क्या प्रकरण चल रहा है कि जीव अज्ञान दशा में जब दूसरे को उपदेश देता है या अपनी बात का आग्रह रखता है कि यही मान्यता सच्च है, हम जो समझे वही सच्चा है, तो ऐसी बात बोलना उनके लिए सत्य इसलिए नहीं है कि ऐसी बात बोलने के पहले मेरे से अपने को और अगले को नुकसान होता है या नहीं होता है इसका विचार करने में वो मौन पड़ा आ जाए, विचार करते करते मौन पड़ा आ जाए, ऐसी दशा एक दफे आनी चाहिए, फिर यथार्थ परिपक्व दशा आ जाए विचार की तो बोलना चाहिए, वरना बोलना असत्य हो जाएगा, सत्य होने पर भी वो असत्य हो जाएगा। श्री तीर्थंकर ने भी ऐसा ही कहा है और उसके आगम में भी यह हाल है, तीर्थंकर ने भी ऐसा कहा है और वर्तमान में उनके आगम में यह बात रही है जो उन्होंने कही, ऐसा हमारे जानने में आया है। कदापि आगम में ऐसा कहा हुआ अर्थ रहा हो नहीं रहा तो भी ऊपर जो बताया है यह शब्द आगम ही है, जिनागम ही है। कदापि हमने जो ऊपर बात कही वो आगम में आपको नहीं मिले तो भी यह शब्द को आगम मान लेना, जिनागम मान लेना हमारे शब्द को, इतने वजन देकर के शिक्षा देते हैं, कितना अधिकार है। हमारी बात आगम है जिनागम ही है कौन बोल सकता है, अधिकार से बोलते हैं वो आचार्य जी, वो अभिमान से नहीं बोलते, अधिकार से बोलते। प्रवचन सार में तो नियम सार में लिखते हैं कि हमारे कार्यविंद से आगम जरते हैं आगम निर्जरते हैं, ऐसे पवित्र तो दशा है कि जिसके वाणी निकलते ही वो आगम बन जाते हैं, तो अपनी पवित्र दशा का भी भान है साथ साथ क्या बात निकलती है, आत्महित की परम कल्याणकारी बात कैसे निकलती है उनका भी ख्याल है, तो कहते हैं कि ये आगम है ये परमागम है, ऐसा समझना तो अधिकार से कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं आचार्य से कहते हैं, अधिकार से कहते हैं। यह शब्द आगम ही है जिनागम ही है, राग द्वेष और अज्ञान ये तीनों कारण से रहित परेशान यह शब्द प्रकट लिखित दशा को प्राप्त हुआ है, इसलिए सेवन करने योग्य है। ये बात हमने किसी के राग द्वेष के वशात नहीं की और अज्ञान तो हमारे में है ही नहीं, तो जो बात हमने कही है वो तो तीनों कारण उसमें नहीं है और बाद में तो लिखावट में बात आई है, इसलिए कोई सेवन करने योग्य है मोक्ष को उसको सेवन करना। संत वचन में लिखने का इरादा था, फिर भी यह पत्र विस्तार को प्राप्त हुआ है और फिर भी हमने बहुत संक्षेप में लिखा है। फिर भी कितने प्रकार से अपूर्ण स्थिति में यह पत्र हम परिसमाप्त हमको करना पड़ रहा है। जितना भाव आया है वही लिखते हैं। तो पहले तो हमको बहुत थोड़े बात थोड़ा वाक्य थोड़े वचन लिखने का इरादा था, फिर भी काफी विस्तार हो गया है। फिर भी हमको लगता है कि बहुत संक्षेप में लिखा है। फिर भी ये पत्र कुछ प्रकार से पूर्ण स्थिति को में रह जाता है और हमको उसको समाप्त करना पड़ रहा है। यह पत्र तुमको और तुम्हारे जैसे दूसरे जो जो भाइयों को प्रसंग है, मैंने हमारा परिचय है उनको प्रथम भाग खास करके ऐसे प्रसंग में स्मरण रखने योग्य है। प्रथम भाग में वो जो बात चली थी तो पहले का विरोध हुआ था, तो साधु लोगों ने किया था, तो वहां उन लोगों को द्वेष बढ़े ऐसे हमारी प्रशंसा या हमारे वचनों की बात उन दोनों को मत करें। तो बाकी के दूसरा भाग और दूसरा भाग तुमको और दूसरे मुमुक्षु जीव को बारंबार विचार करने योग्य है। यानी आप मुमुक्षु हैं तो दूसरे को उपदेश देने की परिस्थिति में नहीं आ जाए, आपस में बैठकर सत्संग करें, उपदेश देने की स्थिति में नहीं आए या हमारी बात का आग्रह रखे ऐसा नहीं हो। अगर कहीं हमारे अभिप्राय से सत्संग में भी कोई दूसरा अभिप्राय सामने आ सकता है तो बात को छोड़ देना है, ठीक है। हमको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है तो हो सकता है, हमारा कोई आग्रह नहीं है कि हम जैसा माने वैसा आपको मानना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने को भी कषाई बढ़ेगी, अगले को भी कषाई बढ़ेगी।
दुराग्रह अपेक्षा वृद्धि होने से होता है,
अहम भाव होने से होता है। जो मैं मानता हूँ, मैं कहता हूँ, वही सच्चा है, ऐसा एक अहम भाव हो जाने से क्षयोक्षम का अनुभव है। बाह्य क्षयोक्षम है, परलक्षित क्षयोक्षम है, तो अहम भाव को पैदा करता है। तो जिस जिस मुमुक्षु को आगम करने का होता है और उसका बाह्य क्षयोक्षम भी बढ़ता है तो साथ साथ थोड़ा अहम भाव आ जाता है, तो अपनी बात का वो आग्रह करने लग जाता है, तो उसमें से फिर वाद विवाद वगैरह बात खड़ी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कहने का कृपा गुरुदेव का यहाँ पर अभिप्राय है।
मतलब ये कहना चाहते हैं कि प्रयोजन भूत पे दृष्टि डालना चाहिए, अप्रयोजन भूत पे कौन करना चाहिए?
वो बात तो जनरल सिद्धांत में है ही, लेकिन जब हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग में हमको जैसा लगे ऐसा कहें, यथार्थ विचारना चाहिए। फिर भी हमारी बात का आग्रह यथार्थ विचारना वाले को नहीं होता, यथार्थ विचारना वाले को अपनी बात का आग्रह रह जाता है, जो ठीक नहीं है वो बात है।
मतलब हम जो भी सत्संग में जो भी बात रखें अपने परिणमन को सामने रखना चाहिए, अपने शास्त्र ज्ञान के क्षोभ को सामने नहीं रखना चाहिए,
अपने दशा को मुक्त करना चाहिए। हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े, यहाँ हम खड़े हैं अब हम कैसे आगे बढ़े यथार्थ रूप से, वो बात इस प्रकार का सत्संग ठीक है।
और जैसे कोई कुछ प्रश्न कर रहा है अगर हमको उसका उत्तर हमारा परिणमन से नहीं आता है तो सरलता से ऐसे बोल देना चाहिए कि शास्त्र में ऐसा आता है पर हमारे परिणमन में वैसा नहीं है।
ठीक है, सरलता तो बड़ी अच्छी बात है कि कोई बात आवे उसको समझ में आती हो और हमारा परिणमन में नहीं आती हो तो भी बता दे। हमारा परिणमन उतना नहीं है लेकिन शास्त्र में हमने ऐसा पढ़ा है समझे हैं उतनी बात है उतनी सरलता होती
अगर इतनी आत्मीयता और इतनी सरलता के साथ सत्संग की उपासना करना।
हाँ सत्संग के सरलता से उपासना करना ये खास सत्संग करने की कंडीशन है शर्त है कि सरलता से ही सत्संग की उपासना करनी चाहिए। पत्रे उदय गर्भ में स्थित ऐसी समाधि है अपने दशा को एक वचन में लिख दिया है कि हमारे में समाधि है लेकिन उदय के गर्भ में रही हुई समाधि है। उदय हमारा कोई देखेगा तो उनको विचित्र बात लगेगी अरे ये क्या करते हैं उपदेश तो वितरकता का देते हैं और खुद तो व्यापार धंधा करते हैं बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं बाजार में बॉम्बे के बाजार में बैठ गए हैं बॉम्बे से चिट्ठी लिखा है चिट्ठी भी बॉम्बे से लिख रहे हैं। तो उदय के गर्भ में स्थित ऐसी समाधि है। कृष्णदास के संग में विचार सागर के थोड़े भी तरंग तरंग मेरे प्रकरण ग्रंथ का नाम विचार सागर है और सागर में जैसे तरंग होते हैं एक एक प्रकरण को तरंग ऐसा नाम दिया है। कृष्णदास के संग में विचार सागर के थोड़ा भी तरंग पढ़ने का प्रसंग मिले तो लाभ रूप है। तो त्रिभुवन भाई को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आपको ये प्रकरण कृष्णदास भाई के समीप में इसका मांचन करना है और कृष्णदास को आत्मस्मरण पूर्वक यथार्थ कहना लिखा है। लिखने वाले का नाम प्रारब्ध देही क्या लिखा है प्रारब्ध से जिसने देह धारण किया है ऐसा प्रारब्ध देही ऐसा लिखा है पत्र के नीचे। लिखने वाला सिग्नेचर किसकी है प्रारब्ध देही के ये देह तो प्रारब्ध से मिला है हम तो देहधारी नहीं है देहातिक दशा में विराजमान है ना तो हम तो देहधारी नहीं है। ये पत्र यहाँ समाप्त होता है और आगे का जो पत्र है वो 430 पत्र लेंगे।
करते हुए ये सब कागज लिखा जाता है एक बार जो वो संध्या करते हैं सोना चांदी का झंडा ऐसा कागज में लिखा जाता है कैसा स्थिति होगा उसका कैसा उसका आत्म जागृति
बहुत बहुत अलौकिक दशा है बहुत अलौकिक दशा। अगर ऐसी दशा की पहचान हो जाए तो पहचान होने वाले का भी निगेड़ा हो जाएगा ऐसी बात है। लोग ज्ञानी को पहचानते हैं क्रमशः वो ज्ञानी बन जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं क्योंकि ऐसा तीव्र परिणमन होता है भीतर कि वो परिणमन देखने वाले का परिणमन को आविर्भूत कर देता है। जैसे कोई बहुत रोता है तीव्रता से तो देखने वाले को रोना आ जाता है कि नहीं आ जाता है पर हंसता है तो हंसने वाले के साथ में हंस लेते हैं। ये फीलिंग का क्या साइंस है कि सामने जैसा देखा जाता है भगवान की प्रतिमा को शांत रूप से देखते हो या शांति आरंभ होती है ऐसे ज्ञानी की दशा को देखते हैं उनको ऐसे दशा अभिभूत होने का प्रसंग बनता है। यही ज्ञानी का प्रत्यक्ष परिचय करने के पीछे रहस्य है यही रहस्य है। क्यों प्रत्यक्ष परिचय करना है कि इनका परिणाम प्रत्यक्ष परिचय के बिना दिखेगा कैसे और दिखेगा तो निर्माण पद का अधिकारी हो जाएगा ऐसा परिणाम उनको आविर्भूत हो जाएगा।
ऐसे कितना आश्चर्य का बात है हम लोगों को रागी को देख के राग उत्पन्न हो जाता है द्वेषी को देख के द्वेष उत्पन्न हो जाता है परंतु प्रत्यक्ष स्वसंवेदन को देख करके स्वसंवेदन उत्पन्न
नहीं होता है क्योंकि वो उसकी पूर्व तैयारी नहीं है हमारे पास नाभी को देखकर राग होता है, द्वेष को देखकर द्वेष होता है, जाते हैं शोक सभा में तो बहुत शोक करते हैं, तो देखने वाले को भी उदासीनता आ जाती है, शोक हो जाता है, अरे कितना दुखी है। तो भगवान को, भगवान का अनंत स्वसंवेदन है, अरिहंत प्रतिमा में भगवान का अनंत स्वसंवेदन है, उसको देखकर स्वसंवेदन का आविर्भाव होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है
ये प्रश्न भी जागृत नहीं होता है,
वहां तो नहीं होता है।
हाँ, मतलब ये स्वसंवेदन नहीं हो रहा है, ये प्रश्न भी जागृत नहीं होता है, तो कितनी बड़ी विडंबना है ये।
ओक संज्ञा बहुत बुरी है, ये तो हमारे जिनेश्वर है, जैसे दूसरे मंदिर में दूसरे लोग जा करके माथा लगाते हैं, वैसे हम हमारे जिनेश्वर के मंदिर में जा करके माथा लगा दो, तो स्वसंवेदन में है वो ही पता नहीं है। और ये स्वसंवेदन हमारा आविर्भाव, स्वसंवेदन का आविर्भाव करने का निमित्त है, वो भी पता नहीं है, विचारे क्या करें। प्रतिमा जी की स्थापना तो इसलिए है कि स्वसंवेदन को आविर्भूत कर दे। रह जाते हैं हृदय के परिणाम भिन्न और हमारे आत्मा और आत्मभाव इससे भिन्न। बड़ी विषय जो आपको विचार रहता है वो सुबह का एक पर लिखा हुआ पत्र है, दिल्ली के जो हाइनेस थे उनके विषय में बार बार विचार बताते थे, इनका कल्याण के लिए सुबह का ये आपको करुणा भावना के कारण से रहता है, ऐसा हम जानते हैं कि आपको करुणा है कि इसका भी कल्याण हो जाए। तो दिल्ली के दरबार थे, आईनेस थे, वो मुंबई में रहते होंगे, कृपालु देव की भेंट हो जाए तो उसका भी कुछ कल्याण हो जाएगा, ऐसा जान करके वो बार बार उनकी भेंट कराने के लिए लिखते थे। उस विषय में ज्ञानी पुरुष की करुणा वृत्ति कितनी होती है, कैसी होती है, इस पर एक बहुत सुंदर विचार यहाँ प्रकट हुआ है। कोई एक भी जीव परमार्थ के प्रति, आत्मकल्याण के प्रति मात्र एक अंश पने भी, कितना मात्र एक अंश मने भी प्राप्त होने का कारण को प्राप्त हो, एक अंश भी प्राप्त होए नहीं, प्राप्त होने का कारण जो एक अंश का हो उसको भी प्राप्त हो, कारण को भी प्राप्त हो, ऐसी भावना, ऐसी करुणा, निष्कारण करुणाशील, ऐसे ऋषभादि तीर्थंकर ने भी किया है, ऐसा भाव तो ऋषभदेव भगवान जो सतयुग के प्रारंभ में आदिनाथ पहले तीर्थंकर हुए हमारे, वहां से लेकर के सभी ने किया है। बीच में किसी ने स्टार्ट किया था, पहले वाले तीर्थंकर ने नहीं किया था, ऐसा नहीं कहना चाहते, क्या हमको ऐसी करुणा भावना है, लेकिन भगवान को वितरक तो नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। ऐसी निष्काम करुणाशील, ऐसी वृषभादि तीर्थंकर ने भी ऐसा किया है, कारण के सत्पुरुषों का संप्रदाय की सनातन ऐसी करुण अवस्था होती है। जितने भी सत्पुरुष हुए, जितने भी तीर्थंकर हुए, ज्ञानी हुए, उन सब की ऐसी निष्कारण करुण अवस्था सनातन में तीनों काल में होती है। भूतकाल में भी अनंत ज्ञानियों को ऐसी करुणा आई, वर्तमान में भी आती है, भविष्य में भी ज्ञानियों को ऐसी करुणा आई, कि एक जीव को भी अगर परमार्थ मार्ग मिल जाता है या परमार्थ मार्ग का कोई कारण मिलता है, निमित्त मिलता है कि इससे उनका कल्याण हो जाएगा, तो निष्काराम करुणाशील ऐसे ज्ञानी तीर्थंकर सब यही प्रयास करते हैं, ऐसा करते ही है। नहीं करते हैं ऐसी बात, तीनों काल में ऐसा ही होता है। और भविष्य में कल्याण हो नहीं ऐसा नहीं, अब भी कल्याण हो जाए ऐसी भावना आती है। वह कैसे देरी से कल्याण में ऐसी भावना नहीं आती है, क्या दिखते हैं समय मात्र के अनवकाश से, एक समय का भी गैप नहीं रखे, अवकाश में गैप रखना, खाली जगह रखना, एक समय मात्र के अनवकाश से एक जीव क्या पूरा लोक आत्म अवस्था प्रति हो, जगत के सभी जीव को आत्म कल्याण हो जाए, आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, सबको कोई बाकी नहीं रहे, ठीक है। कितनी विशाल भावना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा भक्त है, ये दूसरे भगवान का भक्त है, ऐसा कभी ज्ञानी तीर्थंकर देखते हैं सबों के लिए इतनी कर्मावस्था होती, सभी जीव को आत्मावस्था प्राप्त हो, आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, आत्म समाधि में सुख शांति की प्राप्ति हो, अन्य अवस्था न हो, अन्य स्वरूप प्रति प्रकट न हो, अन्य आदि या उपाधि न हो, ऐसी भावना सभी ज्ञानी को सभी तीर्थंकरों को आई है, आती ही है, यही स्वभाव है उन लोगों का, ऐसा निष्कारण करुणाशील उन लोगों का स्वभाव होता है। जिस ज्ञान से स्व आत्मस्थ परिणाम होता है, ऐसा ज्ञान हो कि जिससे परिणाम स्वरूप में स्थिर हो जाए, लीन हो जाए, यह ज्ञान सर्व जीवों को प्रकट हो, कोई जीव बाकी नहीं रहो, सर्व जीव को ऐसा ज्ञान प्रकट हो, अनवकाश रूप से सर्व जीव ऐसे ज्ञान के प्रति रुचिवंत हो, ज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो ऐसा ज्ञान प्रकट करने की रुचि उनको पैदा हो जाए, ऐसा हो, ऐसा ही जिसका करुणाशील सहज स्वभाव है, ऐसा ही जिसका करुणाशील सहज स्वभाव है, यह संप्रदाय सनातन सत्पुरुषों का होता है। ऐसा सत्पुरुषों का भी एक संप्रदाय होता है, अलग पद्धति का यह संप्रदाय है। आज के जो संप्रदाय में पॉलिटिक्स चलता है वो संप्रदाय की बात नहीं है, अब तो हर संप्रदाय में राजनीति चलने लगी है, वो बात सभी जीवों का कल्याण, किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति कम भावना न हो, कोई भी जीव आओ इस संसार में सबको अच्छे से अच्छा सत्कार सबका होना, आने वाले का आ जाए इसलिए अच्छे से अच्छा सत्कार होना चाहिए। सनातन सत्पुरुषों का मैंने तीनों काल के सत्पुरुषों को ऐसा ही होता है, तो संसारी जीव के दुख के विषय में बहुत करुणाशील होते हैं, कोई जीव दुखी क्यों हो, किसी को दुख होना नहीं चाहिए।
मनुष्य को भी ऐसा, मनुष्य को भी ऐसा
जो यथार्थ में आते हैं तो ऐसा ही होता है, यथार्थ मनुष्य को तो यथार्थ ऐसा ही होना चाहिए।
कोई मनुष्य को सिर्फ अपने परिवार वालों के प्रति होता हो, अपने रिलेटिव्स के प्रति होता हो, सबके प्रति नहीं होता हो तो
ऐसा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसमें परिवार वाले कौन और बिग परिवार वाले कौन, कल्याण तो सबका होना चाहिए, हमारे परिवार का कल्याण हो तो क्या दूसरे का नहीं हो,
दूसरे भी आए तो ठीक है, परिवार वाले रहते हैं तो अच्छा रहता है,
परिवार वाले रहते हैं तो अच्छा रहता है, तो क्या कोई पक्ष करना है किसी का, पक्ष विपक्ष में जाना है क्या?
सब नहीं, अनुकूलता रहती है ना सब प्रकार की, तो क्या इस मार्ग में चलने में दिक्कत नहीं होगी?
अच्छा, वो अभिप्राय है तो अनुकूलता रहे वो। अरे भाई, हमको प्रतिकूलता रहे वही अच्छा है। क्या कल आया था, क्या आया था कल के स्वाध्याय में? ये अनुकूलता में तो फंसेगा, प्रतिकूलता है यही भगवान के प्रसाद में। प्रतिकूलता आनी ही चाहिए। क्या आनी ही चाहिए? नहीं आएंगे तो जो मार्ग मिलने में जो सहजता सरलता है वो आएगी नहीं, आनी ही चाहिए। अनुकूलता में जिसको धर्म करना है उसको वास्तव में धर्म करना ही नहीं है, ये बानाबाजी है। अनुकूलता में धर्म करना है उसको धर्म करना ही नहीं, उसका अभिप्राय गड़बड़ है बड़ी। प्रतिकूलता आनी चाहिए, आओ बराबर के आओ, जितने हो सके उतने आओ, हम तैयार हैं इसके लिए।
किसी को अनुकूलता ही अनुकूलता हो
तो सतर्क रहना, जागृत रहना कि कहीं हम अनुकूलता में फंसते तो नहीं, ऐसा जागृत हो जाना। प्रतिकूलता में तो जागृत हो ही जाएगा, योग्यता होगी तो, वरना परिणाम गिर जाएगा या जागृत हो जाएगा, दो में से एक बात होगी। या तो प्रतिकूलता में घबरा करके परिणाम गिरने लगेगा या तो जागृत हो जाएगा।
प्रतिकूलता आती है तो
घरवालों
को राजी रखने के लिए
थोड़ी गड़बड़ है हमारे, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। घरवालों राजी हो नाराज हो, हम तो उदासीन है। अनुकूल रहे तो भी हम उदासीन है, प्रतिकूल रहे तो भी हम तो उनसे उदासीन है, क्योंकि न हमारे कोई घर वाले हैं न कोई हमारे बाहर वाले भी हैं। हमारे कोई घर वाले होते हैं, घर वाले बाल वाले सब हमारे को एक से ही है।
बोले कि ये शिक्षा कहाँ ले रहे?
तो भगवान की शिक्षा है, तीर्थंकर देव की है ये शिक्षा, भगवान की तीर्थंकर देव की है, कहाँ ले रहे का? वो तो इसलिए बड़ों ने लिखा ना सुभाष भाई को कि ये गांधी शिक्षा है, पागलपन की शिक्षा है, लेकिन तुमको दे रहे हैं कि तुम अपने कुटुंब के प्रति निस्नेह हो जाओ, कुटुंब का राग छुड़ाने के लिए ये प्रसंग आया है तुमको, तो भगवान की मेहरबानी समझ करके सीधे हो जाओ, तेरे मत चलो, ये बात है। कुटुंब के प्रति अपनत्व छुड़ाने के लिए कौटुंबिक प्रतिकूलता, जो भी आए उसमें अपना कल्याण है, कोई द्वेष करने की बात नहीं है, उदासीन होने की बात है, द्वेष करने की बात नहीं है, उदासीन हो जाना।
जैसे हमारे कुटुंब वालों के प्रति आत्मकल्याण का भावना, जिसे वजन चला जाता है, कुटुंब वालों के प्रति वजन चला जाता है आत्मकल्याण की भावना के प्रति भी, तो वो हमारे प्रतिबंध को दृढ़ करता है कि प्रतिबंध से छुड़ाता है?
देख लेना भीतर में कि हम कोई प्रतिबंध विषाद को ऐसा नहीं सोच रहे हैं, या हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर के अपनत्व नहीं रख करके सोच रहे हैं, हम अपनत्व करके सोच रहे हैं या अपनत्व छोड़ करके सोच रहे हैं, उतना देख लेना है, बस पता चल जाएगा।
कोई जीव अगर निश्चय निर्धार नहीं किया कि मेरे को संसार से तीर जाना है, कोई जीव ये निर्धार नहीं किया कि हमको संसार से तीर ही जाना है, उसके पहले वो बैलेंस करेगा क्या?
नहीं
सकेगा,
उसके पहले बैलेंस नहीं कर सकता, सबसे पहले निर्धार करना पड़ेगा। पहला तो ये तो है कि हमको क्या करना है, वो तो पहला डिसाइड करना ही पड़ता है सबको। अगर नहीं करते हैं तो कहाँ ठिकाना रहेगा परिणाम का?
उसके पहले कोई भी परिणाम करे वो तो सफल होने वाला है,
कहाँ से होगा? तो अनादि का निर्धार तो संसार को सफल करने का है ही, सभी जीव का, तो जो भी करेगा उसे संसार फलेगा।
सबसे पहले वजन इस बात में आना चाहिए कि मेरे को संसार से तिरना है या
तिरना है, सबसे पहले
वजन यहाँ पर
आना है, सबसे पहले ये। इसको तो पूर्णता का लक्ष्य कहते हैं, उसको तो पूर्ण शुद्धि का लक्ष्य कहते हैं, कि बिना लक्ष्य बंधे ये फायरिंग इन द डार्क ये अंधेरे में तीर छोड़ने की बात है,
सब साधन बंधन हो जाएगा, साधन तो है वो सब बंधन में परिणमित हो
जाएगा। वैसे ही किया है, ये निर्धार किए बिना धर्म साधन बहुत किया है, लेकिन इसका फल संसार आया है। क्यों? क्या हमारा लक्ष्य संसार का अनादि का था? ये तो अनादि का संसार का सभी जीवों का है, वो बदले बिना साधन सही साधन रूप कैसे बोला जाता है? साधन तो साध्य के साथ संबंध रखता है।
हमारा हर परिणाम हर जोड़ी इस विषय में आना चाहिए, हमको संसार को छोड़ना है,
छोड़ना है, ठीक है। तो सुविचारणा में वो बात होती है, हर बात में हर उदय में वही लक्ष्य रहता है, हमको छूटना है, हमको बनाना नहीं है, हमको तो छूटना है। और छूटने के लिए जो कुछ करता है वो सही करता है,
तभी सही करता है, अन्यथा सही नहीं करता।
हाँ, यथार्थता तब आती है जो छूटने के लिए करता है, तब यथार्थता आती है।
हम लोग भाव से नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, पदार्थों से छूटने की बात करते हैं।
ये तो गड़बड़ है, इसमें तो बाह्य त्याग का संप्रदाय चलता है। पदार्थ से छूटने की बात है वो तो बाह्य त्याग की होगी, वो तो संप्रदाय में होता ही नहीं, ऐसा नहीं। अंदर से परिणाम में उदासीनता नहीं चाहिए, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, हमारे परिणाम से उदास है, हमारे लेना देना कुछ नहीं है।
जैसे किसी जीव का अगर लक्ष्य नहीं बनता है, कोई भी कारण आते तो विचलित हो जाता है, तो उस समय वो बैलेंस किस प्रकार से रखे, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए?
वो तो सत्संग ही साधन है, और कोई साधन नहीं है। लक्ष्य बनने के पहले जितना सत्संग होगा लक्ष्य बनने का वो कारण बन सकता है, इसके अलावा तो कोई साधन नहीं। तो उस अवस्था में क्या साधन हो सकता है? कोई साधन नहीं हो सकता, बल यहाँ से मिलेगा, समाधान भी वहां समाधान को प्राप्त होगा, बल भी वहां से मिलेगा। और आत्मकल्याण का लक्ष्य भी बनने का यही एकमात्र निमित्त है। कृपा गुरु लिखते हैं कि ऐसा साधन हमने न कहीं देखा है न सुना है, ऐसा करते हैं। सारा ग्रंथ ही सत्संग पर है,
सब सबको आत्मा ही देखेगा, लड़का लड़की बहुत सबको देखेगा, वो आत्मा ही देगी, चाहे उनको तो गाली दे दिया तो भी ठीक है, हमारा ये पर्व खत्म हुआ, कुछ बोलने का नहीं, हम अपना करते जाएगा तो शायद बोलो के फर्क आ सकता है, लेकिन किसी को बोलने से फर्क नहीं आता।
अपने को तो हमारे अपने परिणाम को संभालना है, बस अपने परिणाम को हम संभाले, अगला उसके उदय के अनुसार कुछ नहीं बोले तो उनका उदय है, हमारा उदय नहीं है वो उनका उदय है, ये जो बोलता है और इनका उदय है उनका उदय के वो जाने, हम हमारे परिणाम को संभाल लें, बात खत्म, हम उदास हो जाए।
हमको बोला जाए तो भी उनका बोलो का उदय है,
लेकिन वो मेरे को बोलता है उसमें फंस जाता है, तो अपने जात को अंदर में इन्वॉल्व कर देता है, इधर वर्क होती है,
वो वही बोला वो जाने।
आपके अंतःकरण में ऐसी करुणा वृत्ति से लिंगड़ी वाले के बारे में बार बार विचार आया करता है, क्या लिखते हैं सुरत भाई में, आपको भी निष्कारण करुणा से वृत्ति है तो उनके लिए बार बार आपको विचार आता है, और आपके विचार का एक अंश भी सफल हो जाए अथवा यह फल प्राप्त होने का सफल होने का एक अंश भी कारण उत्पन्न हो जाए तो यह पंचम काल में तीर्थंकर का मार्ग बहुत अंश प्रकट होना बराबर है। आपकी करुणा वृत्ति देखते हुए हमको बहुत मान होता है, ऐसी करुणा वृत्ति से अगर किसी एक जीव का कल्याण हो जाए या कल्याण होने का तो उसको निमित्त मिल जाए तो ये तीर्थंकर का देव का मार्ग बहुत अच्छी तरह से इस काल में पंचम काल में प्रकट हुआ ऐसा हम मानेंगे। तो तो ये भी बहुत परिस्थिति कम दिखती है कि कोई एक जीव का कल्याण हो, ये परिस्थिति बहुत कम दिखती है। या कोई एक जीव कल्याण के कारण को प्राप्त हो, ऐसी परिस्थिति भी बहुत कम दिखती है। तथापि ऐसा होना संभवित नहीं है, हमको ये उनके लिए बात संभवित, इनकी योग्यता हम नहीं देखते हैं तो संभवित नहीं दिखता है, और उस प्रकार से होने योग्य भी नहीं है ऐसा हमको लगता है। जिससे संभवित होने योग्य है, जो व्यक्ति से ऐसा संभवित मैंने कल्याण होने योग्य है, अथवा जिसका यह मार्ग है, ज्ञानी पुरुष का यह मार्ग है, वह वर्तमान में तो प्रवृत्ति के उदय में है। अपने बारे में देखते हैं कि वर्तमान में तो हम प्रवृत्ति के उदय में है, तो हम अगर हम त्यागी होते ना तो लोग आते रहते हैं, चलो महाराज है, महाराज है, महाराज के पास जाना चाहिए महाराज, लेकिन हम तो रहे गृहस्थी, प्रवृत्ति के उदय में है, तो ये संभवित नहीं दिखता है ये मार्ग ऐसा कल्याण का मार्ग चल जाए, ऐसा दिखता है। लोगों की बाह्य दृष्टि बहुत है, इसलिए वो बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो ये इसका आत्म कल्याण होगा नहीं। हाल तो प्रवृत्ति के उदय में है, और उस कारण से जब तक उनको लक्ष्यगत नहीं होगा कि ज्ञानी पुरुष है ऐसा उसको लक्ष्यगत नहीं होगा, वहां तक दूसरे उपाय प्रतिबंध रूप है, निशंशय प्रतिबंध रूप है, इसे दूसरा उपाय करेंगे और प्रतिबंध में जाएगा, उनको नहीं करेंगे। जो मेरे दावे कि ज्ञानी कैसा ऐसा करता है वैसा करता है, उनको ये लग जाएगा। शंका होना बहुत आसान है, निशंक होना बहुत कठिन है। जीव जो अज्ञान परिणामी होता है, तो जो अज्ञान नियमित रूप से आराधन करने से जैसे कल्याण नहीं है, वैसे मोह रूप ऐसा यह मार्ग अथवा ऐसे लोक संबंधी मार्ग यह मात्र संसार है। क्या कहते हैं, जीव जो ज्ञान परिणामी होता है और वो ज्ञान को आराधन करता है हमेशा हमेशा, तो उसका कल्याण जैसे नहीं होता है, वैसे मोह ऐसा जो मार्ग है, मोह गर्भित मार्ग है, कहीं ना कहीं व्यामोह पड़ा है, और यह एक लोक संबंधी मार्ग है, लोगों की नजर में क्या दिखेगा, इस प्रकार का व्यामोह है, व्यामोह है, वो मार्ग सब संसार है, मात्र संसार है। तो फिर इसको किसी भी आकार में रख दो, मैंने किसी भी दिखाव में रखो, तो भी वह संसार है, वो संसार के अलावा कुछ नहीं है। वह संसार परिणाम से रहित करने के लिए और संसार युक्त वाणी का असंग परिणाम है। क्या इस संसार ऐसे संसार परिणाम से रहित होने के लिए और संसारगत वाणी का असंग परिणाम से जब आधार प्राप्त होता है, तब वह संसार का आकार निराकारता को प्राप्त हो जाता है, वह संसार का आकार मिल जाता है। और गुड भाषा में लिखते हैं
के पास तो प्रत्येक चीज यही लक्ष्य रखते जाते हैं ना कि मुझे मेरा ठीक हो जाए, तो वहाँ जाके भी क्या वो अपना कुछ नहीं करता है, सुनने के लिए ऐसा है क्या करता है,
तलाश करना चाहिए सबको, तो क्या हम ज्ञानी के पास जाते हैं तो यही मात्र एक लक्ष्य से जाते हैं, क्या ऐसा हमारा लक्ष्य है ही और जाते हैं? ऐसे लोक संज्ञा से भी कहीं लोग आते हैं बिना लक्ष्य के, जाना तो जिसके लिए ही जाना चाहिए, ओक सुनना नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सबका ऐसा होता नहीं है, कि वास्तविकता है तो सबका ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो कहते हैं कि संसार परिणाम से रहित होने के लिए और संसार गत माने का आधार प्राप्त होना चाहिए। और संसार गत माने किसको कहते हैं? कि जो ज्ञानी है तो संसार को जिसने छोड़ दिया है भीतर में से, जो अनन्य भाव से प्रतिक्षण मोक्ष भाव में विचरते हैं, इसके वाणी को असंसारगत वाणी कहते हैं। तो वो मोक्षगत उनके परिणाम है, तो इसकी वाणी भी मोक्षगत होती है। मोक्षगत वाणी को असंसारगत वाणी को, इस वाणी का अस्वच्छंद परिणाम से आधार प्राप्त हुआ है। स्वच्छंद परिणाम से इसका आधार नहीं लेना है, और संसारगत वाणी का आधार स्वच्छंद से नहीं लेना है। अस्वच्छंद परिणाम से जब असंसारगत वाणी का आधार प्राप्त होता है, तो संसार का आकार निराकारता को प्राप्त होता है, यानी संसार का आकार छूट जाता है। इसके पहले स्वच्छंद परिणाम से जीव चलता है तो वो मार्ग संसार का है, मोक्ष का है। तो संसार का आकार छूटा नहीं है, संसार का आकार निराकार नहीं हुआ है। दूसरे प्रतिबंध, उसकी दृष्टि के अनुसार चलता रहता है, और ज्ञानी के वचन भी उसकी वही दृष्टि से आराधन करने में आए तो कल्याण होने योग्य लगता नहीं है। क्या कहते हैं कि जैसे दूसरे प्रतिबंध में अपनी अपनी दृष्टि होती है, अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, और ज्ञानी के वचन में भी वही दृष्टिकोण चालू रह गया तो जीव का कल्याण होने योग्य नहीं लगता है। इसलिए वहां आप ऐसा बता देना कि आप कोई कल्याण के कारण नजीक होने का उपाय की इच्छा करता हो तो उसके प्रतिबंध उत्तम होने का उपाय करो, नहीं तो कल्याण की तृष्णा का त्याग करो। कल्याण के लिए तृष्णा बोले, तृष्णा के सामने तृष्णा रखे हैं, जो प्रतिबंध है वो तृष्णा के पीछे होता है, किसी न किसी आशा अपेक्षा के पीछे प्रतिबंध होता है। तो वो निमिड़ दरबार के लिए बात, तो निमिड़ दरबार की हो, हरेक को अपने अपना प्रतिबंध देखना है। वहां उसको आप बता दो कि अगर तुमको आत्मकल्याण के कारण के समीप होने के उपाय की इच्छा हो तो ये प्रतिबंध को कम करने का उपाय करो। प्रतिबंध को रखना भी है और आत्मकल्याण करना है, ऐसे विषय में हम हमारा सत्संग नहीं ले सकते, ऐसा कहते हैं वो डिमरी दरबार का। ये दरबार है, कुछ प्रतिबंध में पड़े, हर एक दिन प्रतिबंध में पड़े होते हैं अज्ञान अवस्था में। तो जहां तक वो प्रतिबंध को कम नहीं करता है तो ज्ञानी को लगता है कि वो उपदेश को ग्रहण करेगा, ऐसी परिस्थिति हमको नहीं दिखती है। अगर वो आत्मकल्याण करने की भावना से उसके कारण को प्राप्त होने के लिए इच्छुक हो, वांछा करता हो, तो कुछ प्रतिबंध कम करके हमारे पास आए तो उसका लाभ हो सकता है। प्रतिबंध रख करके आएगा तो भी लाभ होगा नहीं, क्योंकि उसको कल्याण की सही भावना नहीं है। इसलिए इसकी अगर तुमको प्रतिबंध नहीं छोड़ना हो, ऐसा बोल देना, क्या लगता है कि तुम ऐसा बोलो कि अगर तुमको प्रतिबंध कम करना नहीं है तो फिर कल्याण की तृष्णा छोड़ दो, उसका त्याग कर दो, कल्याण की भावना नहीं बोले ये तो तुम्हारे आत्मकल्याण की तृष्णा है, जैसे पैसे की तृष्णा थी, मान की तृष्णा थी, ऐसे आत्मकल्याण की तुमको तृष्णा हुई है। प्रतिबंध कम नहीं करोगे तो ये तृष्णा को छोड़ो, तो या तो तुम प्रतिबंध को कम करो या छोड़ो, या तुम ये कल्याण की तृष्णा को छोड़ो। तृष्णा की भावना नहीं बोला उनके लिए, क्योंकि भावना होती नहीं है, नहीं तो कल्याण की तृष्णा का त्याग करो। तुम ऐसे जानते हो कि हम जैसे वर्तन करते हैं वैसे कल्याण है, मात्र अव्यवस्था हो गई है वही मात्र और कल्याण है। अगर वो कोई धर्म साधन करते हैं और मानते हैं कि हम जैसे करते हैं वही कल्याण है, थोड़ी अव्यवस्था है बाकी तो कल्याण का ही हम प्रवृत्ति करते हैं तो वही अकल्याण है, धोखे में मत रहना, वही मात्र और कल्याण है। वही मात्र कल्याण ऐसे जानते हो तो वो यथार्थ नहीं है। तुम ऐसे जानते हो कि हम जैसे वर्तते हैं वही कल्याण है, मात्र अव्यवस्था हो गई है, यही मात्र कल्याण है, इतना ही कल्याण है। तो उसके विषय में देखते हैं कि हमारे बारे में ऐसा तो वो कल्याण कर रहे हैं अपना, लेकिन थोड़ी अंदर गड़बड़ है, अव्यवस्था हो गई है, उतना अकल्याण है, ऐसा सोचना यथार्थ नहीं है हमारे लिए, ऐसा कहते हैं। वास्तविक रूप से आपका जो वर्तन है वो कल्याण से न्यारा है, कल्याण से जुदा है, और यह तो जब जब जो जो जीव को वैसा वैसा भव स्थिति आदि समीप योग होता है तब तक उसे यह प्राप्त होने योग्य है। आत्मकल्याण का निमित्त तो जब कोई जीविका भव स्थिति